ओम शांति। आदरणीय गोपी दीदी का हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि गोपी दीदी का बुके से और तिलक से स्वागत करें, और हम सभी करतल ध्वनि से दीदी का स्वागत करते हैं। हम सभी दीदी को तो जानते ही हैं। आपका जो लौकिक बर्थ है वो अफ्रीका में हुआ था, और आपने अपनी लौकिक और अलौकिक पढ़ाई लंदन में की है। आप लगभग 40 वर्षों से भी अधिक आप ज्ञान और योग का अभ्यास कर रहे हैं। आप 30 वर्षों से भी अधिक अपने जीवन को संपूर्ण रूप से समर्पित करके बाबा के घर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 25 वर्षों से भी अधिक IYF इंटरनेशनल यूथ फोरम के आप कोऑर्डिनेटर भी हैं। आप उसकी भी बहुत अच्छी तरह से देखरेख करते हैं। आप एक इंटरनेशनल स्पीकर भी हैं और एक स्पिरिचुअल टीचर भी हैं। और दीदी की एक बहुत अच्छी विशेषता है जो हमने पर्सनल लेवल पे भी देखा, आप एक स्पिरिचुअल मेंटोर भी हैं। आपने कई ऐसे सामाजिक जो संस्थाएं हैं, खास करके जो गवर्नमेंट सेक्टर है, आपने वहाँ पर भी जा कर के बाबा का मैसेज आपने दिया है, और बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स और लेक्चर्स आपने कंडक्ट किया है। दीदी का हमेशा एक प्रयास रहता है कि समाज के अंदर जितने भी वर्ग हैं, उन वर्गों में जाकर के जो अलग अलग जो बाबा के बच्चे हैं, इनडायरेक्ट जो बाबा के बच्चे हैं, उनको कैसे हम बाबा का ज्ञान उनको दे, और वो कैसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में इस स्पिरिचुअलिटी को इम्प्लीमेंट कर सके। तो दीदी, आपका बहुत बहुत एक बार स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अच्छा, हमारे लिए एक बहुत ही कल से हमें लॉटरी मिल रही है ना। कल हमने एक लॉटरी देखी कि हम सभी पांडव भवन गए, और हमने वहाँ पे सब ने मिल करके बहुत सुंदर एकत्रित रूप में हमने योग भी किया। आज भी एक लॉटरी है दीदी के क्लास के बाद, है ना, बीच में से कोई उठ करके नहीं जाएंगे, दीदी के साथ एक चिट चैट है, और श्रेया बेन भी हमारे साथ होंगे, और हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दीदी हमें देंगे। तो ओवर टू गोपी दीदी।
जब मन की लहरें शांत हुई और मौन ने स्वर अपनाया, तब एक मधुर अनुभूति ने मुझको अपने पास बुलाया। न शब्द रहे न कोई विचार, बस प्रेम की धारा बहती रही, एकाग्रता से भी आगे बढ़कर आत्मा परमात्मा में रहती रही। प्रयास न कोई तनाव, बस स्नेह का मधुर स्पर्श मिले, बाबा के असीम प्रेम में मन को सच्चा विश्राम मिले। जब आत्मा को याद आया अपना शश्वत दिव्य स्वरूप, तब भीतर प्रेम का सूरज उगा, मिट गया अज्ञान का रूप। यह संबंध न केवल सोचों का, न केवल ध्यान
यहाँ प्रेम ही पूजा बन कर हर सांस में मुस्कुराती है।
ओम शांति। वाणी से परे जाते हैं हम, तो साइलेंस भी एक भाषा बन जाती है। और साइलेंस की ऐसी भाषा है, कोई संकल्प उसका साधन नहीं है, साइलेंस है ही प्योर फीलिंग। तो हम जितना उस साइलेंस के लहर में रहते हैं ना, प्योर फीलिंग की लहर में रहते हैं, तो उतनी ही हमारी मन में बुद्धि में प्रेरणा मिलती है क्या करना है। उस भाषा में बहुत कुछ समाया हुआ है। प्योर फीलिंग्स ऐसी चीज है कि जैसे आपके अंदर की ज्योत जग गई, तो जो भी दूसरे सामने आएंगे उनको वही फीलिंग्स टच होंगे, उनकी भी ज्योत जग जाएंगी। तो साइलेंस एक बहुत, मैं कहूंगी एक सहज विधि है हमारी ब्राह्मण बाबा के बच्चों के लिए, जो हम इसको भाषा समझ के नहीं चलते हैं। जो भी दुनियावी एक्सपीरियंस है, ओपिनियंस है, आइडियाज है, हम उसको नॉलेज समझ के और उसके बेसिस पे हमारे विचार चलते हैं। लेकिन जो साइलेंस की भाषा है बहुत न्यारी है, वेरी यूनिक लैंग्वेज। तो हमने देखा है कि जहां पे भी हम साइलेंस की भाषा का फायदा लेंगे, वहां सफलता ही सफलता प्राप्त होती है, कम खर्च वाला नशीन होता है। यही है ना आपका थीम, सरल योगी जीवन कैसे बनी रहे। अभी देखो, आत्मा का ज्ञान तो मिला है, लेकिन आत्मिक स्मृति में रह करके सब कुछ करना, इससे ही साइलेंस की शक्ति बढ़ती है। नहीं, दादी जानकी ऑलवेज ये बात को अंडरलाइन करती थी हमारे लिए कि कर्म करते हुए भी साइलेंस की शक्ति जमा हो। जब आप उस भाषा को ही यूज करेंगे तब तो वो बढ़ेंगी ना अंदर से। मानो आपको कोई भी डिसीजन लेना है आपकी लाइफ के लिए या सेवा के लिए या नया मकान खरीदना है बाबा के लिए, तो जो पुराना सोच विचार है जिसका आधार हम लेते थे वो था, अच्छा कई जगह कहाँ है, ये ठीक जगह होनी चाहिए, कितना है उसका प्राइस रेंज, क्या है उसमें सुविधा, क्या है, वो सारी बातें हम सोच लेते हैं। लेकिन जो पहले साइलेंस से शुरुआत करेंगे वो वहाँ जाकर के पहुँच जाएगा और आत्म अभिमानी अवस्था में बैठ के साइलेंस के डेप्थ में जाकर के ये फील करेगा कि 5000 साल पहले क्या हुआ था, यहाँ पे हम थे, यहाँ पे हमने इसका प्रयोग बहुत किया है। तभी तो हमको लगता है कि जैसे बाबा हमको कठपुतली के माफिक चलाता है सेवा के फील्ड पे, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। ये जो सारा लंबा चौड़ा लिस्ट बताते हैं, हमको तो कुछ याद ही नहीं है क्या हुआ है हमारे पास, हमने पढ़ाई भी कंप्लीट पूरी नहीं की है, लेकिन जो बाबा ने बताई है विधि वो हमको याद है, किस विधि से कौन सी सिद्धि प्राप्त करनी है। तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर से बताती हूँ। हमारा बहुत साल पहले, शायद 2011 या 12 में, एक पहली बार एक इंटरनेशनल यंग लीडर्स की रिट्रीट हमने ORC में रखी थी। तो उसके लिए सारे विश्व के यूथ लीडर्स को बुलाए थे हमारे बीके के तरफ से और लौकी के हिसाब से और भारत के भी बुलाए थे। तो उसमें हमारी पूरी टीम आई थी, 45 जितने की टीम थी। तो कौन सा दिन था, ट्यूसडे का दिन था, रिट्रीट फ्राइडे को शुरू होंगी। तो ट्यूसडे के दिन पे आशा दीदी को प्रेरणा आई, चलो गुरुवार के दिन सोनिया गांधी जी का बर्थडे है, हम सभी को वहाँ लेके जावे। अभी इतनी बड़ी रिट्रीट कर रहे हैं, अभी आप सोचो ओआरसी से दिल्ली जाना माना 3 घंटा, वहाँ मिले या ना मिले वो अलग बात है, वापस आना माना 3 घंटा, सारा दिन जाता है ना उसमें। और हमारे अगले दिन फ्राइडे को रिट्रीट शुरू होने वाली थी, तो मुझे ये बात जचती नहीं थी। तो फिर मैंने दीदी को बोला, दीदी आप इनको लेके जाओ, मैं रह जाती हूँ, मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ। कहते नहीं नहीं आपको तो आना ही है पहले से। फिर मेरे अंदर से मैंने बोला, देखो बाबा मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी एनर्जी बहुत प्रेशियस है, मुझे अपनी एनर्जी भी वेस्ट नहीं करनी है, मुझे तरीका बताओ। तो फिर मैंने दीदी को बोला, चलो हम सभी को बिठाते हैं, योग में बिठाते हैं। और मैंने फिर ऐसे ऐसे योग हम किया, सभी को बोला आप अभी आत्माभिमानी अवस्था में सेट हो जाओ, और ये बात सोचो कि 5000 साल पहले जब हम सोनिया गांधी जी से मिले थे तो क्या हुआ था, क्या हुआ था इस दिन पे, बस इतना ही। तो उसमें से क्या हुआ कि 15-20 मिनट का तो योग अच्छी तरह से चला। फिर उसके बाद कहीं ने बोला मैंने फूल दिया, अच्छा वो लिखो, लिस्ट लिखो सभी। फिर किसने बोला मैंने ये प्रश्न पूछा, अच्छा वो लिखो। फिर किसने बोला मैंने ये बताया, ये सेवा क्या बताया, बोला ठीक हो। तो 10-12 आइटम का हमने लिस्ट बनाया, और जिसने जो बोला है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। जिसने बोला हमने फूल दिया तो वो फूल तैयार करे, ठीक है। जिसने बोला हम प्रश्न रखेंगे वो प्रश्न तैयार करे। तो सभी को जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने बांट दी। गए गुरुवार के दिन पे, डिफिकल्ट था क्योंकि हम ऐसे हस्ती के बर्थडे पे तो सभी पहुंच जाते हैं, लेकिन दीदी ने थोड़ा रास्ता निकाल के, टाइम लगा आधा घंटा अंदर जाने में, अंदर गए तो एक बड़ा गार्डन है और एक बाजू के छोटा एक गार्डन है। तो हम बड़े गार्डन में सभी के साथ खड़े थे, तो दीदी ने बहुत कोशिश किया कि हम प्राइवेट गार्डन में जाए, लेकिन मना किया क्योंकि हमको देंगे तो फिर औरों भी पूछेंगे। तो जो एड था उसने बोला, देखो आप है ना, जब सोनिया जी बाहर आएंगे सभी से मिलेंगे तो वो बाहर जाएगी मीडिया को मिलने के लिए, तो सारा क्राउड वहां जाएगा, लेकिन आप नहीं जाना बाहर, आप अंदर रहना। तो फिर जब वापस सोनिया जी आएंगे तब हम आपको मिलाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हुआ। वो आए, वो बाहर गए, मीडिया को मिला, 20 मिनट हुआ, फिर वापस आए तो हम अकेले थे गार्डन में, हमारा पूरा ग्रुप अकेला था गार्डन में। तो अच्छी तरह से सामने आकर के मिली, और जैसे आई तो तुरंत हमने जो वो 10-12 चीजों का लिस्ट बनाई थी ना, कौन फूल देगा, कौन प्रश्न पूछेगा, कौन क्या करेगा, एकदम एक से शुरू हुआ। और कभी कभी तो ये लोग इत्तफाक से 5 मिनट मिलते हैं, 20 मिनट तक हमारे साथ वहां खड़ी रही। भाई साहब भी थे, ब्रिजवान भाई साहब भी थे, आशा दीदी थे। इतना अच्छा उसको लगा कि वो वहां से जा ही नहीं, फिर हमारे साथ वार्तालाप शुरू किया। फिर किसने पूछा आप कौन से बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, कहती है मैं अपने विवेक से पूछती हूं। तो ऐसे 20 ऑलमोस्ट 25 मिनट पास हुए, तब भाई साहब बहुत खुश हुए, कहते देखो हम राखी बांधने के लिए जाते हैं, हमको इतना टाइम भी नहीं मिलता है जितना आज मिला। मैंने बोला भाई साहब ये साइलेंस का फल है, साइलेंस की शक्ति का फल है ये। हमने तैयारी नहीं की होती तो इत्तफाक से 2 मिनट बोर होकर के चली जाती, क्योंकि हम एंगेज नहीं कर रहे थे उनको। और वंडर की बात यह थी, हम जब जैसे बाहर निकले हमारी पूरी झुंड विदेश की, तो सारे मीडिया वाले खड़े थे, तो एक एक करके भाई साहब ने इसको इस तरफ भेजा, मुझे इस तरफ भेजा, वो खुद उस तरफ गए। और वंडर की बात यह थी, हमको इंटरव्यू लिया कि आप सोनिया जी से क्या बातें किया और आप क्यों आए हैं यहां विदेश से, तो हमने रिट्रीट की भी बात की। तो उस प्रोग्राम जो भी इन्होंने शूटिंग की वो रात्रि के टेलीविजन चैनल पे आया था और उससे 3 लोग आए थे रिट्रीट में। तो मैं कहती हूं कि ये क्या है। देखो कभी कभी हमारा एक प्लान होता है और गॉड्स प्लान अलग होता है। भक्ति मार्ग में बहुत समय से हम अपना प्लान लेकर के जाते थे भगवान के सामने। मेरे ये विचार है, मेरा ये प्लान है, मुझे ये करके दो। और हम भगवान को कहते थे, ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन था, आप ये मेरे लिए करेंगे तो मैं ये आपके लिए करूंगा। लेकिन वर्तमान समय, संगम युग का समय ये है कि गॉड्स प्लान है। और कभी कभी ओपन माइंड रखना बहुत जरूरी है इस बात में, खास करके जो हमारे बड़े कहते हैं। कभी कभी प्रैक्टिकल नहीं लगता है, लेकिन जब हम उस चीज को स्वीकार करते हैं और रियली साइलेंस में जाकर के काम करते तो असंभव भी संभव होता है। बहुत बारी मेरी जिंदगी में मुझे ये अनुभव हुआ है, दादी के साथ भी बहुत बारी हुआ है। तब से मुझे पता चला कि देखो साइलेंस की शक्ति की लहर में रहना है तो अपनी बुद्धि को सार में रखना बहुत जरूरी है। आप देखो ना, आपकी बुद्धि की चैनल कई बातों में विस्तार में चली जाती है। चैनल खुलता है इसके लिए, उसके लिए चैनल खुलता है, इसके लिए चैनल खुलता है। तब तो बेचारा मन थोड़ा हलचल में आता है ना, बुद्धि इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होती है ना। अभी बुद्धि को सार में रखने लिए मुझे आज बहुत अच्छी बात लगी बाबा की कि सीट पे बैठना है, सीट से काम लेना है। सीट से हम काम नहीं लेते हैं तो मेहनत लगती है, मन को एक मेहनत महसूस होती है, फिर सब कुछ डिफिकल्ट लगता है। अपने को संभालने के लिए डिफिकल्ट लगता है, खाना पकाना डिफिकल्ट लगता है, कमाई करना डिफिकल्ट लगता है, सब कुछ मेहनत लगता है, क्योंकि मन उस फीलिंग में आ गया है ना। हम जो बिना सीट से काम करते हैं ना, तो कोई हमारी बात नहीं सुनता, हम शक्तिहीन महसूस करते हैं खुद, इसीलिए डिफिकल्ट लगता है। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहती हूँ इस बात में, ठीक है ना, आप ज्वाइन करेंगे? अच्छा, मेरा रिक्वेस्ट है आप 3 बारी उठो और बैठो। बहुत समय से बैठे हैं ना, तो अच्छी स्ट्रेचिंग भी हो जाएगी। 3 बारी उठो बैठो बस। अभी सब जग गए हैं ना, कोई नींद तो नहीं कर रहा है ना। अच्छा, अभी अलर्ट होकर के बैठिए। अभी हम श्वास से शुरू करेंगे। थोड़ा एक गहरा श्वास लीजिए, होल्ड, फिर इसको धीरे धीरे छोड़ो। जैसे श्वास छूटता है अपना पूरा ध्यान इस वर्तमान समय में एकाग्र कर लो। दोबारा एक गहरा श्वास लीजिए, होल्ड, धीरे धीरे छोड़ो और अपना ध्यान को एकाग्र कर लो। और तीसरी बारी एक गहरा श्वास लीजिए और धीरे धीरे छोड़ो। अभी साक्षी होकर के अपना श्वास को देखिए ऑब्जर्व कीजिए और उसको फॉलो कीजिए। अभी अपने श्वास के स्रोत तक अपना ध्यान लेके चलो। पूरा ध्यान बाहर से अंदर के ओर लेके चलो और अपने आप को फील कीजिए अंदर से। मैं कौन हूं इस श्वास को चलाने वाली? अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस कीजिए। अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति श्वास को चलाने वाली, कर्मेंद्रियों को चलाने वाली, अभी अपनी पूरी शक्ति को एकाग्र कर लो भ्रुकुटी के बीच में। मैं आत्मा हूं, अति सूक्ष्म प्रकाश, ज्योति बिंदु आत्मा हूं। प्रकृति के बीच में जो सिंहासन है, ये मेरा तख्त है। अभी जो आपका पुराना नाम रूप है वो भूल जाओ, छोड़ दो और एकदम लाइट का स्वरूप बन जाओ। ज्योति बिंदु आत्मा, शांत चित आत्मा, मालिकपन की सीट पे बैठी है। अभी इसी सीट की स्मृति में आप अभी एक संकल्प रचेंगे कि मैं आत्मा अभी खुद इस शरीर को उठाऊंगी और बिठाऊंगी। और अभी आप 3 बारी उठेंगे बैठेंगे, लेकिन हर बारी इसी मालिकपन की स्मृति में कि मैं आत्मा इस शरीर को उठा रही हूं, मैं आत्मा इस शरीर को बिठा रही हूं। तीन बारी उठो और बैठो। वही स्मृति में टिक जाओ और जो अभी किया है भूल जाओ। आत्मा इस शरीर की मालिक हूं, जब पहली बारी उठे और बैठे और दोबारा जब उठे और बैठे तो फर्क पड़ा? किसको फर्क पड़ा? हाथ ऊंचा करो। अच्छा, सभी को फर्क पड़ा। क्या फर्क पड़ा आपको? इजी लगा? और क्या फर्क पड़ा? हाँ, लाइट किसको महसूस हुआ कि सेकंड टाइम बहुत हल्कापन? हाँ, पहली बारी पावर किसके हाथ में थी? किसके हाथ में पावर थी? मेरे हाथ में पावर थी ना, यहां से ही मैं चला रही थी ना, उठो बैठो उठो बैठो। और यहां से जो दृश्य दिखाई दिया था पहली बारी, तो ऐसे वैसे जल्दी उधर एक दोनों को देख करके जैसे रिएक्शन में उठ रहे थे सभी। अरे बहन जी, हमको क्यों उठा रही है? चलो ये लोग उठ रहे, चलो उठो साथ में, करना पड़ता है ना। वो भारीपन था या ऑटोमेटिक रोबोटिक था, जैसे मजबूरी से कुछ डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं? तो आप सोचो, उस समय तो आप सीट पे नहीं बैठे थे। अपनी सीट पे बैठे थे उस समय? नहीं बैठे थे। तो डायरेक्शन सुना, मजबूरी से उसको फॉलो किया, तो यहां से जो दृश्य लगता था, सभी कोई जल्दीबाजी कर रहा था, कोई अपना टाइम ले रहा था, कोई इधर उधर स्ट्रेचिंग कर रहा था। और जब दोबारा आप लोग उठे तो ऐसे लगा कि फरिश्तों की सभा है। इतना रॉयल ग्रेसफुल था यहां से। तो इस से क्या सिद्ध होता है? सहज राजयोग माना, सहज राजयोग माना, सीट पे बैठ के कार्य करना। वेरी सिंपल। ये एक माइक्रो शिफ्ट है हमारे लिए, लेकिन हम ये माइक्रो शिफ्ट को छोड़ के दूसरे बातों में बुद्धि लगा देते हैं। इस बात में एकाग्रचित की जरूरत है कि अपनी पूरी शक्ति को, अपने आप को सीट पे बिठा दो, सीट से नहीं हिलो। क्योंकि जैसे आप सीट में बैठते हो और सीट से डायरेक्शन देते, एवरीथिंग बिकम्स इजी, एवरीथिंग बिकम्स लाइट। लेकिन बिना सीट से मेहनत। देखो ना, कोई जज होता है, लॉ कोर्ट में जाता है, तो क्या करता है? पहले अपना वस्त्र पहनता है, अपनी टोपी पहनता है, फिर अपनी सीट पे बैठ के हैमर लगाता है ना, सब बातें सुन करके फिर जजमेंट पास करता है ना। तभी वो जजमेंट पूरी लीगल सिस्टम एक्सेप्ट करती है। अभी वही सेम जज, उसको वही ज्ञान है और घर में है और अपने बीवी के साथ चाय पी रहा है, तो उसी समय जजमेंट पास करेगा तो कोई सुनेगा क्या? नहीं सुनेंगे ना। वही व्यक्ति है, सेम नॉलेज, सेम एक्सपीरियंस, बट नो सीट। आज की वाणी का यही महत्व था, ईश्वर के दिल तख्त पे बैठना है, खुद के तख्त पे विराजमान रहना है। तभी आप देखो ना, सब इजी है सच में। हमको इत्फाक से हमारे ब्राह्मण जीवन में कुछ मेहनत लगी है। हाँ, मेहनत इस बात में है कि आपको पुरुषार्थ तो करना है, कोई चीज प्राप्त करनी है तो आपको टाइम निकाल के कर्म में तो आना है, ऐसे थोड़ी बिना कर्म से कुछ होगा आपको। लेकिन उस समय वो मेहनत महसूस नहीं होंगे, वो खुशी खुशी से, प्यार हल्केपन से, बाबा के साथ से। मैं कब से ये बोल के आई हूं कि देखो, हमको एक अनुभव हुआ था, हमारा फरवरी मास में थोड़ा बैक पेन हो गया था, उसमें थोड़ा सा खिसक गया था। उसके बाद फिर हमको विदेश की ट्रैवल में जाना था, तो हमने पहली बार व्हीलचेयर लिया। अभी हम तो बहुत यूज्ड टू है ट्रैवलिंग में, हम हमारा सामान उठा के चल पड़ते, कैबिन बैगेज, वो बैगेज। अभी इस सिचुएशन में तो मैं कुछ उठा भी नहीं सकती थी। तो उस समय वो जो व्हीलचेयर वाला भाई आया, उसने बोला, सिस्टर आप बैठ जाओ ना, मैं हूं ना, मैं सारा सामान लेता हूं, आप बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। वो इतना प्यार से उसने बोला कि मैं जैसे बैठी इसको सामान दे दिया, उसने व्हीलचेयर ट्रॉली को वो व्हीलचेयर के हैंडल पे क्लिप कर दिया। फिर मेरा सारा टेंशन खत्म, मुझे कहाँ जाना है, कौन से गेट पे जाना है, कितने बजे पहुंचना है, सारा टेंशन खत्म। वो चलाने वाला है ना, उसको पता है मुझे सही टाइम पे कहाँ तक पहुंचाना है उसको। इतना मजा आया मुझे, सारा एयरपोर्ट घूमे ऐसे जैसे छोटी बेबी होती है ना, बस ऐसे देखते रहे सब चीजें को, कोई भी टेंशन नहीं, कहां जाने का टेंशन नहीं। तो साक्षीपन की जो सीट है, ये जो सीट है, साथीपन को जब हम बाजू में बिठाते हैं, तब हम साथी को सारा बोझ दे दो ना, उसको पता है वो पतित पावन है, आपको पावन बनाने के लिए आया है, और उसका काम है कि सत्युग के लिए आपको तैयार करना है। तो जो भी है, मैंने दादी में बहुत ये बात देखी है, दादी जानकी के दो विशेष गुण थे। एक था कि वो कभी भी किसी से भी दुख नहीं लेती थी, दुख देने की बात तो छोड़ो, लेकिन दुख नहीं लेती थी कोई भी बात से, क्योंकि वो कहती थी एक भी बूंद का दुख चला गया तो जैसे पॉइजन, मेरे खजाने में पॉइजन आ गया। तो ये एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म होनी चाहिए हमारी, क्योंकि मेहनत तब लगती है जब कुछ बाहर से अंदर आया है, मन को भारी बना रहा है, क्योंकि हमने कुछ बाहर की चीजें स्वीकार की है। ये एक बात। और दूसरी बात कि बीच बीच में दादी का ये अभ्यास था साइलेंस में जाकर के सब बोझ बाबा को देना, जैसे पिछली घड़ी में क्या हुआ है वो भी भूल जाती थी, क्या कर्म किया है, क्या बोला है वो भी भूल जाती थी, सब बोझ सब कुछ बाबा को देकर के अपने आप को हल्का कर देना, उसका काम है ना, वो जाने, उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे के प्रॉब्लम्स है, दादी क्यों सिर दर्दी उठाए। तो दादी का ये एक बहुत स्ट्रिक्ट अभ्यास था, बल जितने भी लोग आते थे दादी के सामने मिलने के लिए, बीच बीच में दादी थोड़ा साइलेंस का गैप रख करके सीट पे बैठ करके साथी को सब कुछ दे देती थी। इजी राजयोग है ना। अभी आप अपने दिल से पूछो, क्या बोझा लेके, क्या बोझा उठा के अभी सब जगह घूम रहे हैं आप, और क्या ये बोझा आपका है? कभी कभी क्या सूक्ष्म रीति से एंग्जाइटी रहती है अंदर, क्योंकि हम कुछ पकड़ के बैठे हैं, जो चीज हमारी नहीं है वो चीज हम पकड़ के बैठे हैं। समझो, जो भी कार्य है निमित्त बने हैं ना उस कार्य के लिए, लेकिन ये जो अंदर कुछ चीज को अपनाने की जो आदत है, एक बहुत डीप आदत है, मैं आपको बताऊं, बहुत डीप है ये आदत। मैं आपको, आप अभी जिस सीट पे बैठे हो आप कंफर्टेबल हो ना, कंफर्टेबल हो ना सभी, ठीक है ना। अभी हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उठ करके ब्रेक ले लो, तो आप ब्रेक के लिए जाएंगे, ठीक है, फिर वापस कहाँ आएंगे? क्यों इतनी सारी सीट तो खाली है, वहां क्यों आएंगे? आधा हॉल खाली है, वहां क्यों आकर के बैठेंगे? हाँ, क्योंकि वो हमारी सीट बन गई है। किस बेसिस पे हमारी सीट बन गई है? कंफर्टेबल है, अच्छा कंफर्टेबल है, लेकिन बहुत सारी कुर्सियां सेम है, वो भी सारे कंफर्टेबल है। अब बस अपनापन बन गया ना यहाँ 20 मिनट बैठ करके। वास्तविकता क्या है? आपकी सीट है ही नहीं, लेकिन जो चीज आप 20-30 मिनट तक बैठे हो, आपने उसको मेंटली अपना दिया है। वी डू दिस ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। कई लोग तो ऐसे होते हैं, अपना नोटबुक पेन रख करके जाते हैं, कोई मेरी सीट ना ले लेवे, राइट? वैसे तो आप सीट लेके भी नहीं आए, अपने सीट भी नहीं बनाई है, फिर भी मेरी सीट बन गई। इतने थोड़े समय में मेरी सीट बन गई। अभी आप वापस आएंगे और कोई और बैठा होगा वहां पे, तो क्या सोच चलेगा? हाय, मेरी सीट पे कौन बैठ गया है? कितना धोखा देते हम अपने आप को। अरे भाई, वास्तविकता है क्या? पहले तो आपकी सीट थी नहीं, आपने मन में अपने आप को धोखा दिया, अपना लिया, मन में ही अपना लिया। अभी कोई और फ्री जगह पे बैठा है और आपके मेरेपन से आप अपने मन को उलझन में लेके आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम किसका है? वो व्यक्ति का है या आपका है? मैं बोल रही हूं, सारे मेंटल हेल्थ की बीमारी ये मेरेपन से शुरू होती है। आप खुद अपनी परेशानी इस मेरेपन से शुरू करते हैं। कैसे से बाबा की, जब अव्यक्त बाप दादा के मीटिंग चलते थे ना, तो एक भाई आया, विदेशी भाई था, दूर से कूद करके आया। पता नहीं, हम तो बीच में खड़े थे, थोड़ा सिटी में मदद कर रहे थे विदेशियों को सेट करने की, तो ऐसे ऐसे कूद करके आया, वो मेरी सीट है। मैंने बोला, भाई कौन सी सीट? नाम तो नहीं लिखे है सीट पे। नहीं नहीं, मैंने देखा, वो मेरी सीट है। मैंने बोला, अच्छा इतना है, देखने से भी मेरी सीट बन जाती है क्या? कोई और वहां ना बैठे? कितना जल्दी हमारी आंखें कोई वस्तु या व्यक्ति में डूब जाती है, मेरेपन शुरू। सारी मेहनत हमारी इसी मेंटेलिटी से शुरू होती है। मैं आपको बताऊं, देखो, एक है राजयोगी बनना, दूसरा है राज ऋषि बनना। इच्छा मात्रम अविद्या। हमने अपने ऊपर बहुत इस पे मेहनत की है, हालांकि हम 100% सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, लेकिन इच्छाएं मात्रम अविद्या वहां से शुरू होता है जब मेरेपन को छोड़ते हैं। सच में अंदर पे कुट कुट के इस चीज को बिठाओ, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, तब आप एक न्यूट्रल अवस्था में रह सकते हैं और आप एक रियल इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं। आप देखो, बाबा ने दादी को, दादी जानकी जी को, काम दिया था ना कि लंदन जाके क्या करना है, मधुबन का मिनी मॉडल बनाना है। तो दादी ने तो अच्छी तरह से मधुबन का मिनी मॉडल बना दिया, ऐसे थोड़ी किया, बोला हमारा लंदन है अभी, मेरा लंदन नहीं, मिनी मधुबन है। दादी अपने आप को विश्व की मां समझती थी कि बाबा ने बनवाया है, बाबा के, बाबा कब, दादी कभी भी ऐसे लंदन के ऊपर वो नहीं डाला है, मेरा है, मेरी है, कुछ नहीं। तो ये जो हम इतने धोखेबाजी में जी रहे हैं मेरेपनों करके, चलो मेरी सेवा, मेरी सेवा मेरे से कोई छीन न लेवे, अरे भाई सत्युग लेके आना है, इतना बड़ा काम है, सर्व के सहयोग से ही होगा ना। और जहां आपका रोल पूरा होता है, वे दूसरे का रोल शुरू होता है। अभी ड्रामा आपसे पूछ के तो नहीं करेगा ना कि ठीक हो, मैं किसी और को इन्वॉल्व करूं, वो तो ऑटोमेटिकली जो व्यक्ति की जरूरत है वो आएगा साथ सामने। ड्रामा अथॉरिटी है, जिसको भी बिठाना है ड्रामा बिठाएगा। तो आप बीच में क्यों पुप करते हो कि मेरी सेवा है, ये कोई मेरे से ना लेवे? आपकी सेवा कहां से हुई? भगवान खुद ओबीडियंस सर्वेंट होकर के आता है, हम कैसे हम अपने आप को बोले कि मैं सेवा कर रही हूं? तो एक अंदर से एक ह्यूमिलिटी की अवस्था बनी रहे, एक बढ़ापा नहीं होना चाहिए कोई भी बात में, चाहे जितने भी साल हुए ज्ञान में, चाहे जितना भी नॉलेज है, चाहे जितना भी किया है। सिंप्लिसिटी इज एसेंशियल टू सिट ऑन गॉड्स हार्ट, ऑनेस्टी इज एसेंशियल टू सिट ऑन गॉड्स हार्ट। और आज इस मास का जो अव्यक्त मास चल रहा है मम्मा के बारे में, माँ जो होती है ना, कभी अपने बच्चों के लिए खराब शब्द नहीं बोलेंगे। माँ जो होती है ना, उसका कार्य होता है कि बच्चे को अपनी विशेषता की स्मृति दिलाए। करेक्शन भी करना है, लेकिन पहले उस बच्चे को अपनी विशेषता की स्मृति दिलाना है। तो ऐसे जब हम रहम दिल, प्योर हार्टेड, सिंसियर अपने आप को बनाएंगे, तब तो बाबा के दिल तख्त पे बैठ सकेंगे ना। और वो जैसे बाबा के साथीपन और सहयोगीपन और ये जो ऑटोमेटिकली बनी रहती है, जैसे बाबा यहाँ ही है, घूम रहा है आसपास, और बाबा ही करा रहा है। हमने तो बहुत मिरेकल्स देखे हैं सेवा के फील्ड पे, कैसे अभी भी वर्तमान समय, शिव बाबा का तो पार्ट अलग है, ब्रह्मा का पार्ट अलग है, ब्रह्मा का स्थापना का पार्ट है, ब्रह्मा बाबा कैसे अपना पार्ट बजा रहा है, कितने लोगों को टच कर रहा है। हमारा काम है हाजिर होना, बाबा को याद करके हाजिर होना, फिर जो बाबा को देना है वो देगा। तो अंदर एक प्रकार की वी नीड अ वेरी रिलैक्स्ड फीलिंग, बट टू बी रिलैक्स्ड यू हैव टू लेट गो ऑफ माई। और जो भी टेंशन एंग्जाइटी अंदर महसूस करते, सूक्ष्म में भी एक कुछ मेरापन पकड़ के बैठे हैं, चाहे मेरा विचार नहीं, दादी ने तो लास्ट में भी ये सोच बंद कर दिया कि कोई मेरी बात माने, दादी ने ये भी छोड़ दी थी बात, इतने अपने आप को हल्का कर दिया था, माने तो अच्छा है ना माने तो भी अच्छा। What is right, what is wrong is also right. तो ये जो बुद्धि चलाने की बात मैं कहती हूं ना, सार में रखना बुद्धि को और सीट पे बैठ के काम करना, वेरी सिंपल मेथडोलॉजी फॉर ईजी राजयोग। और ड्रामा को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी अथॉरिटी तो ड्रामा की है, ईश्वर से भी बड़ी अथॉरिटी ड्रामा है। और ये हमने हमारे जीवन में देखा कि दादी ने कभी ड्रामा की बात को टाला नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखो, कोई भी व्यक्ति कुछ गलत करता होगा तो आप सोचो, ड्रामा के लेंस के थ्रू आप देखो तो उसी समय, उस समय का महत्व है, उसके संस्कार अनुसार, समय अनुसार, स्वभाव अनुसार, सर्कमस्टांस अनुसार उस चीज में कुछ रहस्य भरा है, लेकिन आपको नहीं दिखाई दे रहा है उसका आदि मध्य अंत। ड्रामा को पता है, आपको तो छोटा सा विंडो दिखाई दे रहा है, फिर बुद्धि का अभिमान अंदर आकर के क्यों ऐसे है, कैसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये क्या है? टू मच ऐसी बुद्धि चलती है ना, बुद्धि के अभिमान के सीट पे बैठे हैं। वंडर की बात यह है, हम जिस सीट पे बैठते हैं ना, हमको उसका उल्टा दिखाई देता है। समझो, आप एक सीट होती है यहां पे, आई एम राइट, मैं ही राइट हूं, आज बाबा ने बताया था ना, नहीं, मैं ही राइट हूं। अभी आप उस सीट पे बैठेंगे ना कि मैं ही राइट हूं, यही विचार राइट है, तो आपको सब कुछ रॉन्ग दिखाई देगा, ये ऑटोमेटिक है उसकी। आपको ये चीज गलत दिखाई देंगे, ये चीज गलत, ये चीज सही नहीं है। लेकिन उस समय आप अपनी दृष्टिकोण को चैलेंज नहीं कर रहे कि मुझे ये रॉन्ग क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं आई एम राइट की सीट पे बैठी हूं, इसको तो पहले चैलेंज करो। अभी दूसरी सीट क्या होता है, इंग्लिश में तो कहते आई नो, मैं जानता हूं ना, मैं जानता हूं क्या सही है. तो माना यू डोंट नो. तो जब हम ये सीट पे बैठते हैं आई नो, तो जो व्यक्ति हमारे सामने आएगा इनसिक्योरिटी महसूस करेगा कि इनको भाई सब कुछ पता है, हमको तो कुछ नहीं पता है. वो फिर अपना बेस्ट स्टेप आगे नहीं रख पाएंगे. और आप भल आप जितना भी इसको धक्का मार के पुश करो, उसको इनसिक्योरिटी महसूस होंगी आपके हाजिरी में. ये सारे सीट से वाइब्रेशन मिलते हैं. जो आप दिल तख्त पे बैठेंगे तो उस आत्मा को क्या महसूसता होंगी? बाबा के दिल तख्त पे बैठेंगे उसको अपनापन की फीलिंग आएंगी ना आपसे. तो जो भी हमारे से वाइब्रेशन जा रहे हैं औरों से, हमारी वृत्ति से वाइब्रेशन बनते, वाइब्रेशन से एक पर्सनल वायुमंडल बनता है. यही है सेवा. कोई सेवा कोई बड़ा लेक्चर नहीं है, कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं है. एक वायुमंडल बना के रखना. हम जब दादी जी के साथ शाम के टाइम चिटचैट के लिए बैठते थे तो इतनी अच्छी गहरी गहरी चिटचैट होती थी. दादी फिर बीच में साइलेंस में जाकर के कहती, देखो ये जब सत्य निज ज्ञान की बात होती है ना, तब देखो ये चारों तरफ इसके वाइब्रेशन फैलते हैं. यही सेवा हो रही है. तो हर एक पल पल में जो आप बुद्धि से काम ले रहे हैं, वृत्ति से काम ले रहे हैं, सेकंड टू सेकंड एक वातावरण बन रहा है. और ये वाइब्रेशन को कोई डिस्टेंट की जरूरत नहीं है, कहां तक भी पहुंच सकता है. एक लहर शुरू हो रही है ना. हमने एक बार दादी को पूछा था, दादी आप तो कहते हैं, सब बाबा भी कहते हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तो एक व्यक्ति कैसे सब परिवर्तन लेके. दादी ने बोला लहर शुरू करो, अपनी धारणाओं के बेसिस पे आप लहर शुरू करो, तभी वो कैच होती है. एक से दो, दो से तीन, तीन से, वो वाइब्रेशन पास होते रहते हैं. ऐसे नहीं इंतजार करो कि ये लोग बदले, परिवर्तन हो तब मैं बदलूंगा. अभी ये बात जरूरी है हर एक बीके के लिए कि साइलेंस की शक्ति को जमा करना है तो बीच बीच में अपना चित्त तो साफ रखना है. क्या है, चित्त में बहुत सारी बातें भरी हुई है, भरे हुए बैठे यहां पे, इसलिए तो आधा टाइम नींद आती है, कंसंट्रेशन पावर खत्म हो जाती है. दादी ये अपने लिए बहुत काम करती थी, चित्त को साफ करती थी बहुत. मानी कोई भी पुरानी बातें मुझे याद न आए. अभी कुछ बात याद आती है तो क्यों याद आती है? क्योंकि उस याददाश्त के साथ एक संस्कार जुड़ा हुआ है. हमने वो मेमोरी किस बेसिस पे क्रिएट किया है? हम कोई ना कोई पुराना संस्कार यूज करके हम कर्म में आए थे. हमने कुछ बोला, किसी को दुख दिया, हमने कुछ मिस्टेक किया, गलत कर्म किया, उस संस्कार के आधार से होता है ना. और आप देखेंगे जो अच्छी चीज है वो इतनी याद नहीं रहती है, लेकिन जो आपने बुरी की है वो तो याद बार बार रहती है. सत्युग नाम तो बोलते हैं लेकिन सत्युग के मेमोरीज तो किसी के पास है ही नहीं, क्योंकि हम उसी समय सत्य थे, एक थे अंदर से. मेमोरी तब बनती है द्वापर के शुरू से, जब हम तख्त से गिरते हैं, विकर्म में आते हैं, तब चित हमारी एक मेमोरी ट्रैक बन जाती है. तो जो विकर्मों का होता है वो नोट होता है वहां पे. तो जब हम वापस एक एकाग्र चित्त का यही है कि एक की बातें सारा टाइम चित्त में लगी पड़े, बस एक की ही बातें, दूसरी कोई बातें नहीं, हमको जब योग सिखाया गया था शुरू शुरू में, तो मनोहर दादी जी थे, चंद्रमणि दादी जी भी थे इंद्रप्रस्थ में, और बहुत छोटे थे, 8 साल की उम्र थी हमारी उस समय, हम 5 बच्चे थे, और हमारे पिताजी लेके गए थे, कहते इनको मेडिटेशन सिखाओ ना, 2 बड़ी बड़ी दादियाँ, हम पट पे बैठे थे, इतने छोटे छोटे कमरे होते थे, हमारे पिताजी दोनों दादियाँ बेड पे थी, पिताजी वहाँ चेयर पे बैठे थे, हम सब नीचे बैठे थे। तब चंद्रमणि दादी जी ने हमको बताया था कि देखो, योगी बनना है तो मन का संभाल जरूर करना है, और मन को 2 चीजें चाहिए, लव चाहिए, लॉ चाहिए। और फिर मनोहर दादी ने हमको ये प्रैक्टिस बताई थी कि अभी मन को डिसिप्लिन में रखने के लिए क्या करना चाहिए, ताकि वो एकाग्रचित रह सके, मन मनाभव रह सके। तभी हमको 4 प्रश्न दिए थे, मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं, मैं कहां से आई हूं, मुझे क्या करना है, 4 प्रश्न। और ये होमवर्क दिया कि अभी आप जाओ 1 घंटे के लिए एकांत में बैठो, और 4 प्रश्न का खुद के साथ डायलॉग शुरू करो, और 3 साइकिल करने हैं इस डायलॉग के, 4 प्रश्न 3 साइकिल में, और बीच में आपका मन भटका तो वापस क्वेश्चन 1 से शुरू करना है, और उठना नहीं है जब तक आपने 3 साइकिल कंप्लीट नहीं किए हैं बिना मन भटके, तब तक उठना नहीं है। हम गए बाबा के कमरे में, बाबा के सामने बैठे, 10 बजे था सवेरे, तो शुरू किया, मैं कौन हूं। फिर कोई माता जी आई और बिल्कुल मेरे और बाबा के बीच में बैठी, तो हमारा मैं कौन हूं, अरे ये कौन है, होता है ना, हाँ, पूरा कमरा खाली है और आई बिल्कुल हमारे सामने बैठने के लिए, ये माया का तरीका होता है, पता है ना। तो फिर हम उठे, साइड में बैठे, फिर हमने शुरू किया, मैं कौन हूं, किसकी हूं। इतना अच्छा लग रहा था, फिर बाहर से एक ट्रक हॉर्न बजा के गया, अरे भाई ये क्या है। तो ऐसे 10 मिनट गए डिस्ट्रैक्शन होने में, फिर मैंने जब टाइम देखा कि 10-15 मिनट गए हैं और मेरे पास केवल 45 मिनट बचे हैं, तब मेरे अंदर से एक दृढ़ता पैदा हुई कि देखो, मन को एकाग्र रखना है तो दृढ़ता की बहुत आवश्यकता है, कि कैसे भी करके मुझे इस मन को, मुझे ये होमवर्क कंप्लीट करना है। और जैसे दृढ़ता पैदा हुई, फोकस पैदा हुआ, सब कुछ बाहर की बातें डिफोकस हो गई, और मैंने वार्तालाप शुरू किया, और जैसे शुरू किया 4th question तक पहुंची, फिर 2nd cycle शुरू किया, उसके बीच में बाबा ने बुद्धि ले ली, कहां गए, कौन सी दुनिया में, इतनी लाइट, इतनी आनंद में, इतनी हल्कापन, ये देह भी फिनिश्ड, वो भी फिर पता नहीं आंखें बंद हो गई थी, कब बंद हो गई थी, बस लाइट ही लाइट। और जब आंखें खुली, ऐसे लगा कि 2 मिनट के लिए बैठी हूं, हुआ था 45 मिनट। उसके बाद तो हम 1-1.5 दिन के लिए तो मैं बोल ही नहीं पाती थी, मेरे शब्द भी नहीं थे, इतना गहरा साइलेंस और प्यार और आनंद का अनुभव हुआ था। अभी वर्तमान समय एकाग्रचित बनना है, माना मैं कौन, मैं किसकी हूं, मैं कहां से आई हूं, मुझे क्या करना है, मैं कौन हूं। बस एक की ही बातें चित्त में घूमती रहे, चलो हम इस अभ्यास से समाप्त करते, ठीक है। 11:30 बज गया है, पता भी नहीं चला, पता चला आपको 1 घंटा गया, नहीं चला ना। अभी अलर्ट होकर के बैठिए और हम इस 4 प्रश्नों से का एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा साइलेंस में 1-1 प्रश्न पूछूंगी, और आपको ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है इसमें, आत्मा की इंटेलिजेंस है, उसको पता है वो कौन है, उसको बोलने दो। तो मैं 3-4 बारी इन 4 प्रश्नों का प्रयोग रेपिटिशन करूंगी, ठीक है? ओके, चलो अभी फिर से हम श्वास से शुरू करते हैं। गहरा श्वास लीजिए और धीरे धीरे छोड़ो। और अपना ध्यान वर्तमान समय में एकाग्र कर लो। अभी चलो अंदर की यात्रा शुरू करते हैं। पूरा ध्यान बाहर से अंदर के ओर लेके चलो। कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाओ। और अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूं? किसकी हूं? मैं कहां से आई हूं? मुझे क्या करना है? मैं कौन हूं? किसकी हूं? मैं कहां से आई हूं? मुझे क्या करना है? मैं कौन हूं? किसकी हूं? मैं कहां से आई हूं? मुझे क्या करना है? मैं किसकी हूं?
शांति